پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں سعدیہ اسد. ہمارے پروگرام پاکستان اور بھارت میں نشر ہو رہا ہے. ریڈیو پر براہ راست میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. اور اس سے پہلے کہ آج کا پروگرام شروع کریں, ہم آپ کو بتا دیں کہ وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں حالیہ تبدیلی کے تحت آج سے ہمارے پروگرام کا دورانیہ 30 منٹ کی بجائے 55 منٹ کا ہوگا. یعنی آج یہ پروگرام 9:30 تک نہیں بلکہ 9:55 تک نشر ہوگا. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں.
مجھے تلاش تھی جس کی, وہ ہم سفر تم ہو, میرے حسین خیالوں کی رہے گزر تم ہو.
مجھے تلاش تھی جس کی, وہ ہم سفر تم ہو, میرے حسین خیالوں کی رہے گزر تم ہو. مجھے تلاش تھی جس کی.
جی, اگر زندگی بھر کے لیے کوئی ہم مزاج, ہم خیال اور تعلیمی, سماجی اور معاشی طور پر ہم پلہ, ہم سفر مل جائے تو زندگی واقعی خوشگوار ہو جاتی ہے. لیکن ایسے ہم سفر کی تلاش کوئی آسان کام نہیں. آج ہم امریکہ میں آباد پاکستانی اور مسلم نوجوانوں کی نئی نسل کو درپیش اسی اہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں. امریکہ میں آباد پاکستانی امریکی نوجوانوں کی نئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نسل کے لیے اپنی مصروف پروفیشنل یا کاروباری زندگی کی وجہ سے اور دور دور ریاستوں میں آباد اپنی کمیونٹی کی وجہ سے اپنی پسند کے شریک حیات کی تلاش ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ بن چکی ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ لوگ انفرادی طور پر تلاش رشتہ میں مدد کرتے ہیں یا پھر شادی بیاہ کی ویب سائٹس اس سلسلے میں مدد کرتی دکھائی دیتی ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں کئی کئی ماہ اور بعض اوقات کئی کئی سال کے بعد بھی کسی ہم مزاج اور ہم عادات جیون ساتھی کی تلاش ممکن نہیں ہو پاتی. اس کی ایک بڑی وجہ ان کے درمیان حائل فاصلے اور دور دور ریاستوں میں آباد پاکستانی امریکی نوجوانوں اور ان کے گھرانوں کے درمیان براہ راست ملاقات اور میل ملاپ کے مواقع کا فقدان ہے, جو کسی بھی پائیدار رشتے کی تشکیل میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. اس مسئلے کا ایک براہ راست حل پیش کرنے کی ایک کوشش کی ہے نیو یارک میں آباد ایک معروف پاکستانی امریکی سماجی کارکن جمال محسن نے, جنہوں نے جیون ساتھی کی تلاش میں آسانی اور تیزی لانے میں مدد کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے. نام ہے جس کا milanus.com. آن لائن قائم یہ ادارہ شادی کی عمروں کو پہنچنے والے تعلیم یافتہ اور برسر روزگار پروفیشنل پاکستانی امریکی اور مسلمان امریکی نوجوانوں کو ایک دوسرے سے اسلامی ماحول میں براہ راست ملاقات, بات چیت اور نیٹ ورکنگ کا موقع فراہم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. اس ادارے کے فاؤنڈر جمال محسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر نیو یارک سے. السلام علیکم جمال محسن صاحب.
السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. اتنا اچھا آپ نے وہ انٹرو بھی دیا اور اسٹارٹ بھی کیا ہے ایک بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ.
بے حد شکریہ, بے حد شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ سے پہلا سوال شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہیں, مالیاتی امور کی ایک ایڈوائزری کمپنی کے مالک ہیں, ایک صحافی ہیں, رائٹر بھی ہیں, پاکستان نیوز میں 12 سال تک فائنینشیل پلاننگ, انشورنس, انویسٹمنٹ, ریٹائرمنٹ اور مارگیج جیسے موضوعات پر کالم لکھتے رہے ہیں. اردو میں فائنینشیل پلاننگ پر 2 کتابوں باتیں پیسوں کی کے مصنف ہیں. تو ہمارے سننے والوں کو پہلے تو یہ بتائیے کہ مالیاتی مسائل حل کرتے کرتے شادی بیاہ کے مسائل حل کرنے کا خیال کب اور کیوں آیا, اور milanus.com کے تحت تلاش رشتہ کی تقریبات کے انعقاد کا طریقہ کیا ہے؟
جی شکریہ. ویسے تو وہ فائنانس ہو یا رومانس ہو, ان دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے اور یہ علیحدہ نہیں ہے, ہماری زندگی کے مختلف سمجھیے پہلو ہیں. تو یہ صحیح ہے کہ میں فائنینشیل ایڈوائزر ہوں گزشتہ 35 برسوں سے یہاں نیو یارک میں, جبکہ بیک گراؤنڈ میرا صحافت کا تھا. لیکن میں یہاں پہ جب آیا اور شروع کیا, میں نے تو ظاہر ہے صحافت اس وقت بالکل تھی ہی نہیں, یعنی وہ کٹ اینڈ پیسٹ والا بھی سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے میرے آنے کے. تو اب اس وقت میں نے پھر فائنینشیل فیلڈ میں حصہ لیا، ایم بی اے کیا یہی نیو یارک سے یونیورسٹی سے، اور پھر یہاں میں نے کام شروع کیا. تو ظاہر ہے لیکن ایک کمیونٹی ورک کا ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان سے، اپنے کالج کے زمانے سے. تو یہاں پہ جب لوگوں کو پتہ لگا کہ میں فائنینشیل فیلڈ میں ہوں، تو ان کو پتہ ہے کہ میں بہت سے لوگوں سے ملتا بھی ہوں، باتیں بھی کرتا ہوں، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی فرمائشیں نوٹ کروانا شروع کر دیں. تو ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس فیلڈ میں مجھے گھسیٹا گیا ہے. لیکن میں اس کا برا نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے لیے اگر یہی میرے حصے میں ہے کوئی نیکی تو ٹھیک ہے، یہی صحیح. ہر شخص اپنے اپنے راستہ ڈھونڈتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کی شادی کروانا، اس میں ہیلپ کرنا، یہ بھی کہتے ہیں کہ حج کے برابر ہے. تو میرے خیال میں
اور تو یہ ایگزیکٹ آپ کو خیال کس وقت آیا کہ اب اس خیال کو امپلیمنٹ کیا جائے اور واقعی ایک ادارہ کھول لیا جائے جو لوگوں کی خدمت کرے، اور ان نوجوانوں کو جو امریکہ میں موجود ہیں پاکستانی اور مسلمان، جن کو بہت مسائل ہیں اس وجہ سے کہ وہ نہیں تلاش کر پاتے اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنا شریک حیات اپنی پسند کا، تو پھر کب کب یہ 2006 میں کہ 2007 میں؟
میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سلسلہ جو ہے میچ میکنگ کا، جو کہ ٹریڈیشنل طریقے سے عموماً خواتین ہمارے یہاں کرتی ہیں،
بالکل،
لیکن یہاں چھوٹی سی کمیونٹی ہے تو اس میں تو کوئی وہ مذکر و مؤنث اور اس کی کوئی وہ پرواہ کیے بغیر وہ یہ کام ہوتا ہے. انہوں نے لوگوں نے مجھے جب کال کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ بہت سے لوگوں سے کمیونٹی کے ملتے ہیں، لہٰذا ان کو یقیناً کوئی نہ کوئی پتا ہوگا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا اور میں نے ہیلپ بھی کی بہت عرصے تک. میں یہ تو 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ جب سے شروع کیا، اور ایک دو شادیاں ہو بھی گئیں اس کوششوں سے، لیکن وہ اتنا پروڈکٹیو طریقہ نہیں تھا جو پرسنل میچ میکنگ میں ہوتا ہے کہ آپ ملوائیں 4-5-6 لوگوں سے ملوائیں، پھر کوئی شاید بات بنے یا کچھ بھی نہ بنے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے جس میں کچھ بہتر ہو، اس کا رزلٹ بھی بہتر ہو اور میرا ٹائم بھی اتنا نہ لگے، کیونکہ ظاہر ہے یہ میں ایز اے سوشل ورک کر رہا ہوں، اس میں کوئی کمرشل اسپیکٹ نہیں ہے. لہٰذا تو میں نے بہت ریسرچ کی، کوئی 12 سال پہلے کوئی 6 مہینہ سال بھر ریسرچ کی کہ آخر اور دوسری جو چھوٹی کمیونٹی اس ملک میں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، کس طرح سے یہ مسئلے کرنے. تو میں نے بہت ریسرچ کرنے کے بعد میں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا کہ جس کے اندر ہم ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم تقریب رشتہ، آپ اگر اس کو میٹریمونیل ایونٹ کا ترجمہ سمجھیے، تقریب رشتہ ہوتا ہے. تو اس کو میں نے کہا ایک آرگنائز طریقے سے کیا جائے، تو ایک آرگنائزیشن بنائی milanus.com کے نام سے، اور اس میں میرے گھر کے افراد تھے، میرے بھائی بھتیجے دوست ان کی فیملی، تو بالکل اس طرح سے ہم نے گھریلو انداز میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا، لیکن اس کو بڑا پروفیشنل طریقے سے باقاعدہ ہم کرتے ہیں، اور اب تو بہت ہی آٹومیٹڈ آن لائن آپ جا کے رجسٹریشن بھی کرا سکتے ہیں اور معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں بہت ساری. پھر ہمارا فیس بک پیج بھی ہے ملنس میٹریمونیل ایونٹ کے نام سے، تو بہت ساری معلومات اب لوگوں کو ہو جاتی ہیں، تو بہت سی آسانیاں بھی ہو گئی ہیں ہمیں. شروع میں ہمیں بہت مشکل ہوئی کہ ہم مختلف مقامات پہ جاتے تھے، مسجدوں میں اور تو جہاں جہاں مسلمان مل سکتے ہوں وہاں پہ ہم نے جا کر کے فلائر بھی بانٹے ہیں، پوسٹر بھی لگائے ہیں، اخباروں میں خبریں بھی دی ہیں، اور ابھی بھی ہم کچھ حد تک تو ہم ابھی بھی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے، خاص طور پہ ہماری اولڈر جنریشن، تو ان کو پتا ہوگا تو پھر وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے تھرو سمجھیے کہ ڈائریکٹ ہمیں ینگ لوگ اپروچ کرتے ہیں اور رجسٹریشن کروا کے وہاں آتے ہیں.
اچھا، تو اب تک یعنی اس میں جو آپ تقریبات منعقد کرتے ہیں وہ کس طرح منعقد ہوتی ہیں، اور ان میں جو شرکت کرتے ہیں نوجوان، ان کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں، عمر کی یا تعلیم کی؟
اوکے، تو ابتدا جب ہم نے کی تو عمر کی ہم نے پابندی رکھی ہوئی تھی کہ بھائی انڈر 40 ہو، اور پھر اگر انڈر اوور 40 ہو تو اس کا ایک سیپریٹ کر دیتے ہیں گروپ، لیکن وہ طریقہ بھی ذرا مشکل ہوا اس کو عمل پیرا کرنے میں، کیونکہ جس کو جو اب جیسے 38 یا 39 کی کوئی اگر خاتون ہیں تو وہ کہیں گے کہ مجھے غلط گروپ میں ڈال دیا، तो इसलिए अब हमने उसको रिफाइन करते रहे वक्तन फवक्तन, और अब हमने उम्र की तो कोई कैद नहीं है, अलबत्ता हमने ये ज़रूर रखा है, एक फ़िल्टर डाला है ताकि कुछ बेहतर क्वालिटी के लोग आएँ, पढ़े लिखे लोग आएँ, तो हमने उसमें ये लिखा है कि कम अज़ कम जो है कॉलेज डिग्री उनके पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि कॉलेज डिग्री नहीं है तो शादी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ आने की ये शर्त है कि सिंगल होना चाहिए एक तो, यानी सेकंड मैरिज के लिए नहीं, हालांकि मजहब इजाज़त देता है लेकिन ये माशरा नहीं देता, लिहाजा हमने सिंगल रखा है, सिंगल के मुस्लिम होना ज़रूरी है और कॉलेज डिग्री होना ज़रूरी है और उम्र की कोई पाबंदी नहीं है।
अच्छा जी, तो ये तकरीबात कहाँ कहाँ मुनाकिद होती हैं, अब तक कहाँ कहाँ हो चुकी हैं?
ये वैसे तो तकरीबात हमने बहुत सी रियासतों में की हैं, टेक्सस में, आपके वाशिंगटन में भी की है, शिकागो में है, किया है जा करके, लेकिन चूंकि हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं लिहाजा जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो हमें समझें कि माली तौर पे हमें अपनी जेब से डालना पड़ता है वो खर्चे जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लिहाजा हम चूंकि न्यूयॉर्क बेस्ड हैं तो हमने अब ये फैसला किया कि हम न्यूयॉर्क में ही सिर्फ करेंगे और जिसकी जो ज़रूरत है वो यहाँ आए, और वो लोग आते हैं, लोग बहुत आते हैं, मैरीलैंड, वाशिंगटन, वर्जीनिया, ओहायो, कभी कैलिफोर्निया, एक कनाडा से भी इस बार जैसे आ रहे हैं, तो जिसकी ज़रूरत होती है, जिसको पता लगता है हमारे तकरीब के बारे में, वो खुद यहाँ आ जाते हैं, और हमें भी आसानी, हम उनकी एक आसानी कर रहे हैं पूरी, तो हमें भी अपनी आसानी चाहिए ना। तो हमने ये फिर किया है कि हम गुज़िश्ता कई बरसों से सिर्फ न्यूयॉर्क में ही ये तकरीब करते हैं।
लेकिन इसके अलावा आप कौन कौन से स्टेट्स में ये तकरीबात मुनाकिद कर चुके हैं?
जी, जैसे मैंने बताया कि वाशिंगटन, टेक्सस और शिकागो में हम जांच करके हम ये तकरीब कर चुके हैं।
अच्छा जी, तो आम तौर पर जो आपने तकरीबात मुनाकिद की या जो आप करते हैं उसमें कितने नौजवान शिरकत करते हैं या कर चुके हैं?
हमारे एवरेज हर तकरीब में तकरीबन 65-70 के करीब सिंगल आते हैं रजिस्टर करवा के, और फिर कुछ चूँकि हमारा जो हमारी तहजीब में ये है कि पेरेंट्स या फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व हों, ख़ास तौर पे अगर लड़की है तो वो उसको अकेले नहीं भेजते हैं, लिहाजा हमने उनको भी अकोमोडेट किया है और वो भी रजिस्टर करवा के उनके साथ तशरीफ लाते हैं, तो वो तकरीबन 25-30 वो होते हैं, कोई 70 करीब ये, तो 100 तो ये के करीब हमारे हॉल में होते हैं, लेकिन हम उन्हें पेरेंट्स को हम ज़रा सेपरेट बैठाते हैं ताकि सिंगल नौजवानों को आज़ादी के साथ बातचीत करने की
का मौका मिल सके। तो ये जो है आपने अभी तक आप कह रहे हैं कि 2-3 रियासतों में करवा चुके हैं और अब न्यूयॉर्क में कराते हैं, तो साल में एक ही करवाते हैं कि इससे ज्यादा भी करवा चुके हैं या कराते हैं?
नहीं, हाँ, शुरू में हमने साल में 3 भी किया है, लेकिन वो जरा ज्यादा हो जाता है, फिर उसमें इतना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ हमारी टीम में और इंक्लूडिंग मी, सब प्रोफेशनल हैं, उनके अपने बिजनेस हैं, तो वो इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हम बार बार करें, तो हमने इसको लिमिट कर दिया है साल में 2 बार, तो हर 6 महीने पे करते हैं, एक अप्रैल में करते हैं, एक अक्टूबर में करते हैं।
अच्छा, तो अब अप्रैल में आपका अभी एक होने वाला इवेंट?
जी हाँ, अप्रैल 29 को होगा, संडे होता है दिन, आमतौर पर हम संडे को रखते हैं ताकि लोगों को आसानी हो, और टाइमिंग भी हमने जो है वो 11-4 रखी हुई है ताकि अगर कोई मैरीलैंड या वाशिंगटन से आ रहा है तो 4-5 घंटे की ड्राइव आराम से वो सुबह में करे और फिर 4 बजे जब ख़त्म हो तो वो घर पहुंच जाए, तो उसको आसानी हो कि कहीं होटल का उसको खर्चा ना पड़े और वो अपने डिसेंट टाइम में अपने घर वापस पहुंच जाए।
तो आपने जो यहाँ के पाकिस्तानी नौजवान हैं, जो अमरीकी मुसलमान हैं, उनको जो अपने शरीक हयात की तलाश में बरसों सर्फ करते थे या करते हैं अभी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर या रिश्ते कराने वाली ख़वातीन के थ्रू, आपने उस तमाम दौरानिया का को कंडेंस कर दिया एक दिन पर मुहित कर दिया।
हाँ, इसकी यही खसूसियत है कि देखिए अमली तौर पे जब आप 1-on-1 बेसिस पे आप देखना शुरू करते हैं किसी मैच मेकर के साथ, तो आप कम से कम अगर एक बार कई महीने आपको लग जाएंगे कम से कम 4-5 लोगों से मिलने के लिए, कई महीने, साल भी लग सकता है। यहाँ ये होता है कि अगर आप तकरीब में आते हैं तो 5 घंटे की तकरीब में आपको कम से कम 5 आदमी जो हैं वो ऐसे होंगे जिनसे आपका कोई मुनासिबत होती होगी, कोई मैच मेकिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको 5 लोग राइट अवे बिल मुशाफा आपके पास मौका है कि आप उनसे मिलें, बातचीत करें और फिर डिसाइड करें कि आगे बात बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है। तो वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं होता कि जिसमें आपको कोई फोर्स किया हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल ओपन सोशल आवर होता है, हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो ईजिली वो उसी से सिर्फ बात करते हैं जिससे उनको लग रहा होता है कि हाँ भाई कोई मुनासिबत है, कोई मैच मेकिंग हो सकती है, कोई केमिस्ट्री बन सकती है, उन्हीं से वो बात करते हैं। तो एक तो ये एक्सपेडाइट भी हो जाता है ये मामला कि आपको इतने लोग चंद घंटों में मिल गए, और आमने सामने, ये चैटिंग की तरह नहीं कि वो आप $30-40 आप वो फीस भी दे रहे हैं किसी वेबसाइट पे, चैटिंग भी कर रहे हैं महीनों,
नहीं अब तो $100 भी होती है फीस तो।
हाँ फीस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो चार्ज करते हैं और अपना वो महीनों गुजारने के बाद जब वो अब मुलाकात का वक्त आता है तो मालूम हुआ कि जी वो
कई चीजें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं चाहिए थी, या जो क्रिटिकल चीजें हैं वो उसमें मौजूद ही नहीं है, जो कि ना चैटिंग से पता लग रही थी, ना टेक्स्ट मैसेजिंग से पता लग रही थी, ना बायो से पता लग रही थी, ना आपस में टेलीफोन पर गुफ्तगू से पता लग रही थी। तो आपने ये मौका फराहम किया कि बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जो सभी के सब पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, शादी के ख्वाहिशमंद लोग हैं, नौजवान हैं, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, उन सबको आपने एक जगह इन्वाइट किया एक तरह से, और एक मौका फराहम किया कि वो आपस में बैठें और एक दूसरे को बराह रास्त भी देखें और जो पसंद आए उन उससे बातचीत भी करें,
उसी से बातचीत बढ़ाएं,
उसी से बातचीत बढ़ाएं और अपना वक्त जाया बाकी 60 लोगों पर ना करें, बाकी 55 लोगों पर ना करें। तो क्या फिर ये कोई खास कोई रेस्टोरेंट में आप एहतमाम करते हैं या किसी बिल्डिंग में, क्या कहाँ ये तकरीब होती है?
हमने मुख्तलिफ जगहों पर किया, पहले हम एक होटल के बैंक्वेट हॉल में कर रहे थे, अब हम एक बैंक्वेट हॉल है जहाँ शादियाँ होती हैं, खासी बहुत खूबसूरत हॉल है यहीं लॉन्ग आइलैंड में, हिक्सविल टाउन का नाम है उसके अंदर, और तो वहाँ हम करते हैं जिसमें हमें बहुत सी सहूलतें भी हैं, आपको जो मैनेजर है उससे वैसे ताल्लुकात हैं वो बहुत हमें हेल्प मिल जाती है, और एक खूबसूरत जगह पे हमने बहुत सोचा था, हमें देखें हम अगर चाहें पैसे बचाने की सोचें तो हम इसको कहीं मस्जिद में भी करवा सकते थे और किसी ऐसे ही हॉल लेकर के VFW का और वो या एल्क्स लॉज लेके वहाँ भी करवा सकते थे और पैसे बचा सकते थे, लेकिन हम कम्युनिटी को एक कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छी चीज़ दें जहाँ आने पर उनको भी अच्छा महसूस हो और क्वालिटी एक उनको हम फ्राहम कर रहे हैं कि आप वहाँ आएँ और हमें, और फिर ये है कि हमें मस्जिद में फिर ये भी होता है कि बाज़ लोग ज़रा कहते हैं यार अब वो मस्जिद में जाकर के यहाँ पे भाई वहाँ तो ये है कि वो बाज जब मस्जिद जो आम तौर पे नहीं जाते हैं उसके लिए फिर बोले कि अब खास तौर पे जाए, तो ये सारी बातें भी होती हैं फिर, तो इस तरह से हमने एक बिल्कुल एक न्यूट्रल जगह पे हम करते हैं जो कि आप आए और तो आपको ऐसा लगे जैसे कि आप शादी अटेंड करने आए, हालांकि वो सिर्फ शादी के लिए रिश्ते की तलाश में आए।
तो उसमें बाकायदा आप यानी किस तरह अरेंजमेंट किस तरह होता है कि कुर्सी मेजों का जिस तरह के होटल में होता है या रेस्टोरेंट्स में होता है वो कुर्सी मेजों पर सब लोग बैठ जाते हैं?
हाँ बिल्कुल वो होता है, बाकायदा हम सजाते भी हैं, हम कभी स्टेज भी बना देते हैं ताकि खूबसूरती
एक अच्छे खुशगवार माहौल में, खूबसूरत माहौल में वो पहली मुलाकात उनकी हो
उसका, और हमें हम उसमें ये करते हैं कि उसी बैंक्वेट हॉल में जो फैमिली मेंबर हैं उनकी अलग हम टेबल साइड पे लगा देते हैं ताकि वो अपनी नेटवर्किंग करें अपने बच्चों के लिए, और जो सिंगल्स हैं उनका हम जो है वो सबसे पहले ये करते हैं कि सोशल आवर होता है उसके अंदर हम उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो 60 सेकंड हम 1 मिनट में वो बता देते हैं कि भाई अपने बारे में अपना नाम कि कहाँ किस टाउन से क्या ऑक्यूपेशन है एजुकेशन क्या है
वो कैंडिडेट्स खुद बताते हैं।
अच्छा
तो एक एक मिनट में सब कैंडिडेट्स अपना तारुफ कराते हैं और उसके बाद
तो वो मौका ऐसा होता है जिसमें सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि किससे हमें बाकी बात करनी है बकिया प्रोग्राम के दौरान, क्योंकि उसमें एक बेसिक आइडिया उनको वहाँ वहीं से मिल जाता है। उसके बाद फिर वो टेबल पर होते हैं, उन्हें हमने हेल्प के लिए कुछ टॉपिक्स भी दे देते हैं जो शादी से मुतालिक होते हैं, और उसके बाद जब एक दफा वो आइस ब्रेक हो गई है तो वो फिर अपना वो जो बातचीत जो है वो जारी रहती है।
अच्छा।
और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो हेल्प भी करते हैं, क्योंकि बाज कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि वो बातचीत में बहुत शाई होते हैं, तो
अच्छा।
अब वो चाह भी रहे हैं कि किसी लड़की या किसी को मैसेज अपना दे दें कि
हाँ,
भाई,
लेकिन वो कह नहीं पाते,
वो कह नहीं पाते, तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं।
अच्छा।
बल्कि वहाँ पे एक बिजनेस कार्ड की तरह से हम मिलन का एक कार्ड भी बना के हम उन्हें देते हैं कि आपको जो पसंद आए उसको आप अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सारी वो दे दें उनको, और अगर उसने भी आपको पसंद किया होगा तो वो भी आपको अपना कार्ड। तो जिससे मतलब ये हुआ कि आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है और अब आपके पास कॉन्टेक्ट भी आ गया है। अब आप इस तकरीब के बाद अपने पेरेंट्स से भी मिलें, अगर वहाँ पे मौजूद हैं, नहीं हैं तो आप फिर फैमिली से मिलें। तो
एक ही दिन में सारे मराहिल जो कि कई बरसों में कभी कभी तय होते हैं उसी दिन तय हो जाते हैं, और कम से कम इतना ज़रूर होता है कि वो उनके पास एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर 60-70 लोगों के या जितनों के वो चाहते हैं वो पसंद आते हैं उनके उनके पास होते हैं। तो लेकिन आपने, मैं पढ़ रही थी आपकी वेबसाइट पर, आप लोग ये भी एहतमाम करते हैं कि जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो बैठी रहती हैं जबकि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं पोटेंशियल मैट्रिमोनियल, वो उठकर हर खातून के पास या जिसके पास
करवाते हैं। जी हाँ।
अच्छा।
तो हाँ, क्योंकि वरना तो ये होगा कि आप फिर सबसे मिल नहीं पाएंगे ना। हम आप सबसे मिलने के लिए हमें किसी को तो मूव करना है ना, तो हमने ये रखा हुआ है कि लड़कियां को एहतरामन हमने कहा कि आप बैठी रहें अपनी टेबल पे और लड़के खुद टेबल टू टेबल जाके
जिनसे बात करना चाहे वो वहाँ करें,
जिनसे बात करना चाहे करें, हम उसके उनको हम मौके फराहम करते हैं 10 मिनट 15 मिनट ईच टेबल, ताकि वो जिसके ऊपर भी उन्होंने फोकस करना है वो उनसे बातचीत करें, एक्सचेंज करें इन्फॉर्मेशन।
तो बेहद शुक्रिया। ये जमाल मोहसिन साहब, हमारी गुफ्तगू भी जारी है लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर बाकी गुफ्तगू हम ब्रेक के बाद करेंगे।
जरूर।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमेरात को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से और अमरीका का दौरा करने वाले मुमताज पाकिस्तानियों से। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों में हालिया तब्दीली के तहत इस प्रोग्राम का दौरानिया 30 मिनट से बढ़ाकर 55 मिनट कर दिया गया है। अब ये प्रोग्राम आज से हर जुमेरात को नशर होगा पाकिस्तान में रात 9 से 9:55 तक रेडियो पर, मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर और उर्दू वीओए के फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक है facebook.com/voaurdu। सुनना न भूलिए, हर जुमेरात को पाकिस्तान में रात 9 से 9:55 तक पेशकश यास्मीन जमील। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हम बात कर रहे हैं अमेरिका में उड़ते बादलों की तरह नहीं बल्कि जिंदगी की मसरूफियत में उलझे हुए पाकिस्तानी और मुस्लिम नौजवानों को जिंदगी के किसी हमसफर की तलाश में मदद देने वाले एक इदारे मिलन US.com की, जिसके फाउंडर जमाल मोहसिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से टेलीफोन पर, और हम शुक्रगुजार हैं अपने उन सुनने वालों के जो इस वक्त हमारे उर्दू व्यू के फेसबुक पेज पर हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं लाइव और कमेंट्स भी दे रहे हैं और इसको पसंद भी कर रहे हैं। कुछ देर में हमारा रابطہ कट भी जाता है, हम कोशिश करते हैं कि रابطہ दोबारा बहाल हो जाए। तो हम अपने सुनने वालों में से जो इस वक्त मेरे सामने नाम मौजूद हैं, नाइक मोहम्मद है, मोहम्मद साकिब सुल्तान हैं और कुछ लोगों ने उमर जेब हैं, उन्होंने अपने फ़ोन नंबर दिए हैं। और हम अपने सुनने वालों को ये बता दें, जैसे कि अगर आपने हमारा ये प्रोग्राम भी शुरू में नहीं सुना, कि हमारा ये जो जमाल मोहसिन साहब हैं अभी तक ये रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं और ये जो तकरीबात मुनाकिद कर रहे हैं रिश्ते की तलाश के सिलसिले में, नदीम ख़ान आपके लिए भी यही बात है और रहमान जेब ख़ान आपके लिए भी, अख्तर वाली काकड़ हैं आपके लिए भी यही बात कि पाकिस्तान से तो ज़ाहिर है कि अभी इनकी तकरीबात में कोई शरीक नहीं हो सकता ना, लेकिन हम इनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कभी इस तरह की के कोई प्रोग्राम जो हैं पाकिस्तान में भी अरेंज किए जा सकें। जमाल मोहसिन साहब, आप हमारे साथ न्यूयॉर्क से टेलीफोन पर हैं।
जी ये रिक्वेस्ट जो है ये हमें बहुत आती रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं वहाँ उसके हिसाब से इस तरह की तकरीब करवाना जो है मुझे मेरे जहन में जो है वो ये है कि दावत देना है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो कहें कि ये देखें ये अमेरिका की एक और कोशिश ऐसी है जो कि हमारे कम्युनिटी में ये नामहरमों से मिलवाने की कोशिश की जा रही है, ये इसको अमेरिकनाइज कर रहे हैं।
तो ये तराज तो यहाँ पर भी आपके सामने आते होंगे कि क्या बल्कि आप बताइए कि यहाँ पर जो अमेरिकी कल्चर में डेटिंग का कॉन्सेप्ट है, इस डेटिंग के कॉन्सेप्ट में और आप जो मैरिज के जो कैंडिडेट्स हैं मैट्रिमोनियल कैंडिडेट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, इन दोनों में इनकी वैल्यूज में क्या फ़र्क है, इनके अंदाज में क्या फ़र्क है?
देखें काम तो हम पूरी दुनिया में जाहिर है शादी एक बहुत बड़ा यू नो एक फैमिली जो है बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है हर मुआशरे में, तो शादी एक बहुत अहम है सवाए बहुत मामूली पॉपुलेशन के, मेजॉरिटी जो है वो हर जगह शादी करती है ठीक है, लेकिन सिर्फ तरीका मुख्तलिफ होता है हर जगह। यहाँ भी जो है ये जो मुलाकात का हमने सिस्टम रखा है, जाहिर है आप वो कहेंगे कि ये स्पीड डेटिंग से किस तरह से मुख्तलिफ है, आपका यही क्वेश्चन है मेरे ख्याल है राइट तो स्पीड डेटिंग में अगर आप गौर करें तो उसमें ये होता है कि जो किसी भी क्लब और रेस्टोरेंट में जहां भी ये स्पीड डेटिंग हो रही है चंद चंद मिनट के लिए वो सिंगल एक दूसरे से मिलते हैं, वहां सिर्फ लड़का और लड़की होते हैं ठीक है अकेले, यहाँ लड़का और लड़की के साथ फैमिली मेंबर भी होते हैं और हमारी टीम के जो शैपरॉन होते हैं वो भी होते हैं वहाँ पे। तो ये जो है ये मतलब एक सिर्फ अकेले में हम कोई मुलाकातें नहीं करवा रहे कोई खिलवत में, ये एक ओपन बैंक्वेट हॉल में जिसमें साइड लाइन में फैमिली मेंबर भी बैठे होते हैं, तो इसलिए आप ये ज़रूर कह सकती हैं कि ये आइडिया समझिए कि बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हमने ईस्ट और वेस्ट दोनों को एक मिला दिया है और दोनों को हमने कोशिश की है कि उनके अपने अपने जो वैल्यूज हैं वो रखी जाए उसके अंदर।
तो यानी ये वो चीजें हैं जो यहाँ की जो पाकिस्तानी अमेरिकी कम्युनिटी है और जो मुस्लिम अमेरिकन हैं उनके लिए भी एक्सेप्टेबल है और इसलिए वो फैमिलीज के साथ इस हद तक वो हैं ये सारे जो काम हैं एक बड़ी गैदरिंग में आकर करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं, जो मजाका महसूस नहीं करते।
बिल्कुल, इसलिए कि जाहिर है वहाँ पे इतने लोगों में तो कोई भी सिवाय बातचीत की और कुछ हो ही नहीं सकता।
तो इस वक्त जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं फेसबुक पर भी और रेडियो पर भी, हम अपने सुनने वालों को ये सवाल देंगे कि क्या आप समझते हैं कि जिस तरह का आइडिया जमाल मोहसिन साहब ने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ न्यूयॉर्क में और अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी शादी ब्याह के जो इदारे हैं या जो अफराद हैं वो निजी तौर पर इस तरह की गैदरिंग्स का एहतमाम करें ताकि वहाँ भी ये मसाइल जो शादी ब्याह के हैं उनको हल करने में कोई मदद मिल सके? आप हमारे फेसबुक पर अगर चाहें तो इसके जवाब लिख सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। और एक सवाल शोएब हसन निहालका ने खुशाब से पूछा है कि जमाल साहब ये बताइए कि कितने नौजवान इस प्लेटफॉर्म से यानी आपके प्लेटफॉर्म से milanus.com से अपनी ज़िंदगी के हम सफ़र तक पहुँचे?
ओके बहुत अच्छा सवाल है और ये मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ अर्ज कर सकूं। वो ये है कि हालांकि हमारे अदारे से कोई हमने कोई 1600 लोगों को अब तक मुतारिफ करवाया है जिसमें बेशुमार शादियां हुई हैं, लेकिन हमें जो पता लगा है, जोर पता लगने पर है, पता लगा है वो सिर्फ 38 शादियों का हमें पता लगा है और वो भी पता लगा है दूसरे उनके फैमिली मेंबर्स या उनके दोस्तों के जरिए डायरेक्ट उन्होंने हमें नहीं बताया कि उनकी शादी हमारे तवस्सुत से हुई है।
तो इसका मतलब कि वो बाद में आपसे कोई रابطہ नहीं करता?
नहीं, ये बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई टेस्टिमोनियल नहीं है, और उसकी वजह आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो टैबूज हैं उसकी वजह से लोग जो है पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान में भी मैच मेकर के थ्रू शादियां हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो ब्रेक करते हुए होते हैं कि मेरी बेटी के लिए तो बड़े रिश्ते आ रहे थे, वो तो ये लड़का पीछे पड़ गया तो इस तरह से हो गया। तो हमारे साथ भी इसी तरह होता है कि वो हुई हमारे थ्रू है, लेकिन वो फिर कहते फिरते हैं कि यार हमारी बेटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था।
हाँ।
लेकिन यह है कि हम
तो ये आप समझते हैं कि ये जो टैबूज हैं कब खत्म होंगे, इसको खत्म कैसे किया जाए?
क्योंकि ये नहीं लगता कि ये खत्म होगा। पाकिस्तान में तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये चल रहा है, एक चीज एक कल्चर है वो छुपाने का, बताने का, वो ना बताने का, तो वो तो चलता रहेगा। यहाँ हो सकता है कि एक दो नस्लों के बाद ये शायद खत्म हो जाए, क्योंकि जाहिर है अभी तो हम फर्स्ट जनरेशन है ना, तो हम तो वही लेके आए हैं सारा बैगेज। हाँ। तो अभी हमारे जहनों में यही है, वही स्टाइल है कि अपनी बेटियों को तो फौरन वो भेज देते हैं कि किसी तरह से जल्द अज जल्द इसकी शादी हो जाए।
हाँ।
बेटों को ऐसे सोने और हीरे की तरह से ऐसे रखते हैं अपने हाथ में कि वो तो किसी वक्त भी कैश किया जा सकता है, उसकी क्या जरूरत है शादी की, जल्दी क्या है।
अच्छा।
हालांकि उनको मासूमों को इतना नहीं मालूम कि यहाँ रह करके आप लड़का हो लड़की उसकी शादी जल्दी होनी चाहिए, इसलिए कि आपने ज्यादा देर की, वो लड़का अपनी पसंद से जहाँ वो जॉब करता है जहाँ वो पढ़ता है वो कर लेगा, फिर आपके हाथ से जब चिड़िया निकल जाएगी फिर आपको ख्याल आएगा कि ओहो यार ये तो मैंने सही नहीं किया, मुझे तो फौरन इसके भी शादी उसी तरह करनी चाहिए थी जिस तरह जल्दी मैंने बेटी की है।
अच्छा, तो आपके पास जो अब तक कैंडिडेट्स आते हैं इस रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनमें कौन कौन लोग अब तक, यानी इंजीनियर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, क्या क्या रेशो होता है?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हमने, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने सिर्फ एक फिल्टर डाला है कि कॉलेज डिग्री होना जरूरी है, वो चाहे पाकिस्तान से हो इंडिया से हो, डजंट मैटर एज लॉन्ग एज दे वेंट टू द कॉलेज। ठीक है, तो हम तो हमारी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ कॉलेज डिग्री है, लेकिन आम तौर पे उमूमन हमारे पास जो पोस्ट ग्रेजुएट के और प्रोफेशनल लोग जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, अटर्नीज भी हैं, वो तशरीफ लाते हैं यहाँ पे रजिस्टर करके। और तो हालांकि हम ये नहीं उनसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई प्रोफेशनल होना जरूरी है, लेकिन चूंकि हमारी कम्युनिटी में, मुसलमान कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में तालीम का एक अच्छा रिवाज है, खास तौर पे लड़कियां जो हैं वो बहुत आला तालीम हासिल करती हैं यहाँ पे लड़कों के मुकाबले में, तो प्रोफेशनल लोग ही आते हैं हमारे यहाँ ज्यादा।
तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में पाकिस्तानी जो अमेरिकी आबाद हैं, पाकिस्तानी आबाद हैं, और जो मुसलमान अमेरिकी हैं उनमें ये टैबूज जो है अब टूटते चले जा रहे हैं, और तालीम याफ्ता लोग खुशी से और छुपाए बगैर सामने आकर ऐसे इदारों से रابطہ करने के लिए तैयार होते हैं ताकि उनका ये मसला हल हो, जो वाकई एक बहुत बड़ा मसला है कि दूर दूर रियासतों में लोग आबाद हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए, सफ़र करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है हवाई जहाज से आने जाने में, और कोई एक मुलाकात में तो रिश्ते हो भी नहीं जाते, तो वो सफर के खर्चों भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, ना उनके पास इतना टाइम होता है। तो अगर कोई ऐसा इदारा, आप जैसा इदारा जो पहली बार शायद न्यूयॉर्क में आप कह रहे हैं कि कायम हुआ है और जो ये सहूलत भी फराहम कर रहा है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा जिंदा एक दूसरे के सामने ला कर बिठा दे, तो वाकई ये जो टैबूज हैं ये खत्म होते, मतलब होना शुरू हो जाएंगे। हम शुक्रगुजार हैं जमाल साहब उन करम फरमाओं के जो इस वक्त फेसबुक पर आपके प्रोग्राम को, आपकी गुफ्तगू को और इस मौजू को बहुत पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा अहम मौजू था। इमरान उस्मान है, नदीम खान है, रहमान जेब हैं, सरदार अली हैं, वकास अहमद हैं, साबिर नाज हैं, अमीर कुरैशी हैं, रशीद अली हैं, जहीर काजी हैं, दिलबर हसन बंगश हैं, मुश्ताक बाजवा हैं, फारूक शाहिद हैं, एम जोहे मुमताज़ हैं और राजा यूसुफ हैं, और इसके साथ साथ अभी शहजाद खान आए हैं, और इसके साथ मोहम्मद अली ने भी अभी ज्वाइन किया, इकबाल शाह ने हमें ज्वाइन किया फेसबुक पर, मुइन खान ने ज्वाइन किया है, और आपको यानी सराह रहे हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं
माशाल्लाह। तो लगता है कि ये एक अहम टॉपिक है और या बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जिसकी वजह से इतनी लंबी लिस्ट आपने अभी बताई, तो मैं इनके लिए एक मालूमात इनको भी देना चाहता हूँ कि आपने शायद सवाल किया था कि हम पाकिस्तान जाके क्यों ना इस तरह से एक तकरीब रिश्ता करें, वो तो मुमकिन नहीं हो सकेगा, वो बहुत बड़ा काम है, लेकिन एक सर्विस हमारे वेबसाइट पे है, उन लोगों के लिए जो वो अटेंड नहीं कर सकते प्रोग्राम, उसका नाम वही उसी वेबसाइट पे milanus.com पे ही एक और सर्विस है, ये जो होती है हमारी तकरीब उसको कहते हैं मैट्रिमोनियल इवेंट रजिस्ट्रेशन।
अच्छा।
लेकिन एक हम ना मैट्रिमोनियल डायरेक्ट भी रखा हुआ है, मैट्रिमोनियल डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन।
अच्छा।
तो उस डायरेक्ट में जाकर के वो अगर रजिस्टर करा देते हैं और वो कोई 12 क्वेश्चंस हैं वो एक प्रोफाइल वो भर दें, उसके बाद वो हम एक्टिवेट उनको कर देते हैं, तो वो एक तरह से मेंबर बन गए जो कि फ्री मेंबर हैं, वो उस पर कोई चार्ज नहीं है। और वो जब मेंबर एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो दूसरे मेंबर्स को डायरेक्टली इधर बाय फोन और ईमेल दोनों उसमें मौजूद होते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो चाहे वो जहां जिस मुल्क दुनिया के जिस भी हिस्से में रहते होंगे।
अच्छा।
तो जो पाकिस्तान और इंडिया से सुनने वाले इस वक्त आपके हैं सामईन, उनके लिए ये मैट्रिमोनियल डायरेक्ट सर्विस जो है मैंने इसी नीयत से रखी थी कि भाई जो लोग नहीं आ सकते हैं वो कम अज कम ईमेल और फोन के जरिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकें जो भी इस वक्त सिंगल हैं और दे आर लुकिंग फॉर अ मैच।
अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी आपने मालूमात फराहम की। और इस वक्त जो फेसबुक पर हमारे पाकिस्तान में लोग हमें सुन रहे हैं और वो यही पूछ रहे थे, तो उनके लिए ये अच्छी खबर आपने बता दी कि अगर वो चाहें तो milanus.com पर जाकर उस पर इस जो मालूमात इन्होंने फराहम की वहाँ पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, तो तमाम लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे उनका रابطہ हो सकता है ईमेल के थ्रू, या फिर बाद में ज़ाहिर है टेलीफोन पर भी ये गुफ्तगू हो सकती है। तो ये भी एक अच्छी कोशिश है जो जमाल मोहसिन साहब ने अपनी तंजीम या अपने इदारे के थ्रू पहुंचाई है। बेहद शुक्रिया जमाल मोहसिन साहब, हमारी गुफ्तगू जारी। लेकिन एक सवाल आपसे भी ये भी है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होती है क्या ये सारा साल जारी रहती है या सिर्फ तकरीबात के इनाकात के दिनों ही में आप इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं?
जी हाँ, ये जो रजिस्ट्रेशन जो इवेंट के लिए होती है ये सिर्फ एक इवेंट के लिए होती है, लिहाजा इवेंट से हम 2 या 3 महीना पहले हम इसको ऑन करते हैं।
अच्छा।
तो अभी इस वक्त ऑन है April 29th के लिए, जाके वो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट है वो हमने एक बहुत बड़ी वेबसाइट है eventbrite.com। तो इवेंट का तो आपको पता ही है EVENT, और ब्राइट जो है BRITE एज ए टोमेटो। तो eventbrite.com बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसपे तमाम इवेंट्स के वो अपने अपने लगाते रहते हैं, तो हमारा भी इसमें लगा हुआ है। उसमें अगर आप मुस्लिम मैट्रिमोनियल डालेंगे तो वो हमारे आ जाएगा वो रजिस्ट्रेशन का पेज।
अच्छा।
और फिर लोग जो हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो पाकिस्तान और इंडिया में जो आपके सामईन हैं उनको सिर्फ ये मैं कह सकता हूँ कि जाहिर है वो खुद तो तकरीब में नहीं आ सकते, लेकिन उनके यकीनन रिश्तेदार दोस्त अहबाब यहाँ नॉर्थ अमेरिका में होंगे, तो वो उनको ये इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, फेसबुक पे टैग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जिस तरह से भी ये एक सर्विस है जिससे वो फायदा उठा सकते हैं।
तो अब अगला ये बताइए कि जो milanus.com का रोल खत्म उसी दिन हो जाता है जब वो इवेंट खत्म होता है?
जी हाँ, हमारे पास कोई उसके बाद की सर्विस नहीं है, क्योंकि सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए मेरी हेल्प करते हैं द डे ऑफ द इवेंट ऑल्सो, और तो हम उस दौरान जितनी भी हम उनकी हेल्प जो चाहिए हम करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई सर्विस नहीं है, हमारे पास कोई एम्प्लॉई नहीं है कि जो वो उनको फैसिलिटेट करे।
अच्छा।
तो सिर्फ वो तकरीब के लिए ही हम के दौरान हम जो कुछ हेल्प कर सकते हैं, मिलवा सकते हैं, बातचीत करवा सकते हैं, यू नो मीडिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
अच्छा, लेकिन क्या आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके पास वॉलंटियर्स कम है, वसाइल कम है, बहुत सी दूसरी फलाही तंजीमें यहाँ पर हैं पाकिस्तानी अमरीकियों की जिनके साथ आप कनेक्ट होकर दूसरी स्टेट्स में भी ऐसे ही इवेंट्स कराने में उनकी मदद कर सकते हैं, एटलीस्ट वसाइल वो इस्तेमाल करें और आप उनको गाइड कर दें या मैनेजमेंट के चीजें दे दें उनको?
मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ, बल्कि मैंने बहुत से लोगों की ऑलरेडी हेल्प की है जो जो ये करना चाहते थे, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे कॉल करके भी पूछा, कुछ ने स्नीकिंगली दे जस्ट केम टू अटेंड माय इवेंट और फिर उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, जिस तरह से भी हो डजंट मैटर। लेकिन एक बात इसमें है मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि जो भी साहब या साहिबा करना चाहती हैं वो ये सोच के करें कि वो कम्युनिटी की खिदमत कर रही है, कोई पैशन उनके अंदर होना चाहिए। ये ना समझें कि इससे वो कोई पैसे बना लेंगी, यू नो, या बना लेंगे। तो अगर तो पैशन है और कमिटमेंट है तो फिर आप कामयाब होंगे, वरना आप एक प्रोग्राम दो प्रोग्राम के बाद जो है ना वो आप खुश हो जाएंगे. यहाँ पे 11 साल से मैं ये तकरीब कर रहा हूँ, हर साल कम से कम एवरेज 2 करता हूँ, तो अब ये हमारा 21वां तकरीब रिश्ता होने वाला है अप्रैल 29 को.
वाह, तो जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारी वेबसाइट पर urduviewer.com पर और फेसबुक पर, और वो पाकिस्तान अमरीका में रहते हैं और ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क में और न्यू जर्जी में या वाशिंगटन और वर्जीनिया और मेरीलैंड वगैरह में रहते हैं, उनके लिए एक मौका है कि 29 अप्रैल को इस प्रोग्राम में शरीक होकर अगर वो चाहते हैं या वो ख्वाहिशमंद हैं कि अपने ज़िंदगी भर का हम सफ़र तलाश करें और उनको कोई मौका मिले, तो वो रابطہ कर सकते हैं milanus.com पर, जिसकी जिसका जो फेसबुक लिंक है हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के बाद अपने फेसबुक पेज हरदम रमा ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दें और वो उनसे आपसे बराह रास्त लिंक खोल सकें. अली खान रांझा हैं फेसबुक पर, बदर चकवालियाँ हैं, हारून रशीद हैं, मुमताज़ तबस्सुम हैं, इन्होंने बहुत सराहा है. सफ़ीरुल्लाह ने कहा है कि बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई प्रोसेस हो जिसमें ख़ानदान के लोगों के साथ बैठ कर बहुत सारे लोग शरीक हों और अपने लिए हम सफ़र की या शरीक हयात को चुनने के लिए कोशिश कर सकें. अच्छा, तो अब ये है कि ये तो सारी बातें थी milanus.com के हवाले से, लेकिन हम अपने सुनने वालों को जैसा कि बताया है कि आप सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट ही नहीं हैं, आप सिर्फ सामाजिक कारकुन ही नहीं हैं, बल्कि आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आप एक सहाफ़ी भी हैं, आप एक राइटर भी हैं, और आपका ताल्लुक जो है वो फाइनेंशियल उमूर की एडवाइजरी से है, आप मशावरत करते हैं. तो कुछ बताइए, जो आपकी एक कंपनी है जो फाइनेंशियल उमूर की मशावरत करती है, वो किस किस्म के मशवरे आप देते हैं लोगों को और किन को वो मशवरे देते हैं?
यहाँ पे जो मैंने अपनी मैं कम्युनिटी में 35 वर्षों से फाइनेंशियल प्लानिंग में हूँ और मेरे हर तरह के क्लाइंट है, लेकिन चूंकि मेरा मिलना मिलाना ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी में है, लिहाजा मेरे क्लाइंटेल भी जो मुस्लिम हैं, इंडिविजुअल हैं, कुछ कॉरपोरेट कंपनीज भी हैं जिनके मैं रिटायरमेंट प्लान जैसे 401k होता है वो करता हूँ, फिर हर तरह की इंश्योरेंस प्लानिंग है वो करता हूँ, कॉलेज सेविंग प्लानिंग बच्चों की, मतलब जो भी है जो एक फैमिली को ज़रूरत हो सकती है यहाँ जवानी से लेके बुढ़ापे तक के लिए माली मंसूबाबंदी, उसके लिए मैं उनकी हेल्प करता हूँ और मशवरे देता हूँ. मैंने इस पे कॉलम भी लिखा, किताब भी लिखी, बातें पैसों की के नाम
और से. वो पहली किताब है उर्दू में जो इस मौजू पर शाये हुई है और किसी ने लिखी,
पहली और आखिरी,
अभी तक आखिरी है,
कोई अभी तक आखिरी है, हालांकि उसको 11 साल हो चुके हैं, उसको भी 2007 में लिखी थी मैंने, तो किसी ने लिखी. उसकी वजह यह है कि देखें फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत हैं हमारी कम्युनिटी में, लेकिन किताब लिखने के लिए, कॉलम लिखने के लिए उनको कुछ लिखना भी आना चाहिए. तो चूंकि मेरा बैकग्राउंड है जर्नलिज्म का और लिखने का की आदत थी, तो मैंने ये इंजॉय किया है जब मैं ये लिखता था कॉलम और फिर किताब की शक्ल में भी छपवाने में, ये मेरा शौक था कि मैं इसको इस तरह दूं ताकि वो कोई भी अगर चाहे तो वो पूरी किताब उसके पास है, उसमें हर तरह के टॉपिक हैं. और मैंने फिर उर्दू में लिखा है तो उर्दू का पढ़ने का, देखिए इंग्लिश में तो इंटरनेट पर आप जाएं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर न जाने कितने आर्टिकल मिल सकते हैं आपको, लेकिन उर्दू जबान में कोई चीज़ आपको मिले तो आप इंजॉय करें. और मैंने कोशिश ये की है कि उसके जो सकील टर्मिनोलॉजीज हैं उसको भी आसान लफ्ज़ों में उर्दू में बयान करें और उसके अंदर शुस्ता जबान इस्तेमाल की है. वो अगर आपने किताब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर आपको लुत्फ भी आएगा, हालांकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बहुत खुश्क मौजू है, इसमें जाहिर हर एक का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो लेकिन मैंने कोशिश की है और माशाल्लाह.
तो आप हमारे यानी पाकिस्तान में तो फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवाइजरी होती ही नहीं, हर आदमी खुद ही अपना सब कुछ तय कर लेता है कि मैंने ये पैसे को कहाँ खर्च करना. तो ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि अमेरिका में लोग कितनी अहमियत देते हैं कि अपने पैसे को, अपने सरमाए को, अपनी ज़िंदगी के प्लान्स को जो रिटायरमेंट के होते हैं कितनी अहमियत देते हैं, किस तरह प्रोफेशनल लोगों से जाकर मशवरे लेकर फिर वो अपने उन प्लान को तरतीब देते हैं.
हाँ, इसमें भी हर शख्स मुख्तलिफ है, ज़रूरी नहीं कि अगर कोई प्रोफेशनल है और उसके बहुत पैसे हैं तो उसने प्लानिंग भी की होगी. मैंने देखा है कि बहुत स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और उनके पास रिटायरमेंट प्लान में बहुत ही मामूली से रकम पड़ी हुई है, इसलिए कि उन्होंने उसके पर तवज्जो नहीं दिया और उसको ज़रूरत अहम नहीं समझा. इस वजह से मेरी जॉब जो है बहुत अहम हो जाती है कि मैं उनको ये तरगीब एक तरह से तबलीग करता हूँ. मैं मुख्तलिफ सेमिनार्स, कम्युनिटी सेमिनार्स के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए उनको بتاتا ہوں کہ بھائی پلاننگ کر لو, کیونکہ لوگ جاگتے ہیں بالکل جب وہ اب وہ وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں. مثلا اب کوئی بارہویں جماعت یہاں پہ کیا کلیئر, اب کالج میں جانے والا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کالج سیونگ پلان آپ کے پاس ہے تو وہ بتائیے گا ذرا. میں نے کہا کہ بھائی آپ بہت دیر سے جاگے, تو اس بچے کا تو نہیں, البتہ جو ینگر آپ کے دو بچے اور ہیں وہ اس کی بات کیجیے آپ, تو کر سکتے ہیں ہم. اسی طرح ریٹائرمنٹ پلان جو ہے وہ 65 برس کی عمر میں جب ریٹائر ہونے اس وقت نہیں بنایا جاتا, بلکہ جب آپ 20-25 سال پہلے, تاکہ آپ کے پاس ٹائم ہو کہ ہاں اس کے لیے تھوڑا 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 کر کے سائڈ پہ رکھتے جائیں. تو اس طرح سے یہ مالی منصوبہ بندی تو ہے ہی فیوچر کے لیے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کل ضرورت ہے تو آج لے لیں. اور اسی طرح انشورنس بھی ہے, انشورنس ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جب بیمار پڑیں گے یا آپ مرنے کے قریب ہیں تو آپ بولیں کہ مجھے لائف انشورنس دے دو, ایسا نہیں ہوتا. انشورنس لی جاتی ہے جب آپ بالکل اچھی صحت میں بھی ہوں اور ینگ بھی ہوں, تو اس وقت لی جاتی ہے. تو اسی طرح ڈسیبلٹی انکم پلان, یعنی کہ آپ اگر ڈسیبل ہو جائیں تو آپ کے خرچے, کھانے پینا تو آپ کا وہ ویسے ہی رہے گا, گھر کا کرایہ یا مارگیج بھی ویسی رہے گی, لیکن آپ کی انکم بند ہو جائے گی, تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. تو ڈسیبلٹی انکم پلان آپ اس وقت لیتے ہیں جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں, اچھی صحت میں ہوتے ہیں اور کوئی دور دور ڈسیبلٹی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہوتا. کیونکہ اگر ہے کوئی جس میں, جیسے آپ کی کمر میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ ڈسیبل ہونے والے ہیں, تو وہ ظاہر ہے انشورنس کمپنی نہیں دے گی آپ کو. تو یہ ساری چیزیں مستقبل کے لیے ہوتی ہیں, اور اسی لیے ہمارا جو ہے جاب بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیں آپ کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ میکینک پاس دوڑ کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ ہمارے پاس اگر کوئی پرابلم آپ کو ہوا اور آپ آئیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے آپ کے لیے. تو ہم, ہماری جاب ہے کہ ہم آپ کو پہلے سے بتائیں گے, دیکھیں بھائی ہیلتھ خراب ہونے سے پہلے لائف انشورنس لے لو, ڈسیبل ہونے سے, معذور ہونے سے پہلے جو ہے وہ ڈسیبلٹی انکم لے لو, ریٹائرمنٹ پلان کے لیے کم از کم جب 40 کے ہو تو 40 کے پیٹھے میں, 50 میں بھی آ جاؤ چلو 10-15 سال تو ہے نا ابھی بھی, تو اس وقت ریٹائرمنٹ پلان کے لیے کانٹیکٹ کرو مجھے. تو لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں آخری وقت کا.
تو آپ ان لوگوں کو مشورے دیتے ہیں کہ وہ پہلے سے اپنا تمام جو سرمایہ ہے اس کے بارے میں پلاننگ کر لیں.
میں یہی کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا نا کہ جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اگر بڑھاپے میں کریں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب تو آپ مرنے والے ہیں, اب قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں, تو اب آپ نے اگر پڑھی بھی نمازیں تو اس کا کتنا ثواب ملے گا.
تو اسی لیے ہر کام کو وقت پر کریں بلکہ وقت سے پہلے کریں. اچھا آپ یہ نیو یارک میں جو پاکستانی امریکیوں کی ایک فعال تنظیم ہے پاکولی, پاکستان امریکن کمیونٹی آف لانگ آئیلینڈ نیو یارک کی, اس کے فاؤنڈنگ رکن بھی ہیں, تو اس سے اب آپ کا کس حد تک رابطہ ہے, اور یہ تنظیم اب تک کیا ایسے کام کر چکی ہے جو آپ چاہیں گے کہ سب کو پتہ لگے کہ بہت کام کر رہی ہے؟
پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئیلینڈ, جہاں میں رہتا ہوں لانگ آئیلینڈ میں, یہ ایک نیو یارک کی بہت ہی فعال تنظیم ہے جو ہم تقریباً 11 برسوں سے اس کے لیے پروگرام کرتے ہیں. کچھ سب سے بڑا پروگرام جو ہمارا ہوتا ہے وہ پاکستان ڈے جو آئیزن ہاور پارک میں ہوتا ہے, اور کوئی 10-12 ہزار لوگ آتے ہیں. ہم پاکستان سے سنگر بلواتے ہیں, اس کے اندر ہم کلچر پیش کرتے ہیں. جیسے لاسٹ ایئر ہم نے جو ہے وہ ہیر رانجھا کی اسٹوری جو ہے ہم نے وہ پیش کی تھی, اپنا ایک فوک ورثہ ہے ہمارا. اس کے علاوہ پاکستان کا جو گاؤں کا جو ایک ولیج کا ہم نے ایک ماڈل بنایا تھا, جس کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, کنواں ہے اور چیزیں, مطلب بنا کر کے ایک ماڈل بنایا. تو اس طرح سے اس سال آئیزن ہاور پارک میں 12 اگست کو ہم کریں گے پاکستان ڈے فیسٹیول, جس کے اندر ہم اسی طرح سے ایک میوزک پروگرام بھی ہوگا اور ایک کلچرل پروگرام بھی ہوگا, اور میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں پاکولی کا, اور اس وقت ڈائریکٹر ہوں. میں مختلف پوزیشن میں رہ چکا ہوں, 4 سال تک میں پریزیڈنٹ بھی تھا, لیکن اب ہمارے نئے لوگ ہیں آگے ہیں, لیکن میں ابھی بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے فاؤنڈنگ ممبر ہوں تو میرا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کے اندر. اور ہم اس کے علاوہ پاکستان ڈے کے علاوہ ہم بہت سے یہاں پہ کچھ کام کر رہے ہیں, جیسے سوپ کچن ہے جس میں ہم 450 لوگوں کو ونس اے ایئر ہم جو ہے نا وہ کھانا کھلا, نہ صرف کھانا کھلاتے ہیں, سرو کرتے ہیں ہم جا کے. تو اس کے علاوہ مین اسٹریم میں پالیٹکس میں اپنے پاکستانی کمیونٹی کو انوالو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم جہاں رہتے ہیں لانگ آئلینڈ میں, ہم وہاں پہ اب ہم ایک ورک شاپ کرنے والے ہیں جس میں پاکستانی بزنس مین اور اینڈ ویمن دے کین دے کین گیٹ انوالو تاکہ جو ناسو کاؤنٹی کے پاس جو کانٹریکٹس اور بزنسز ہیں وہ ان کو بھی ملیں اسی طرح سے جیسے دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو مل رہی ہے.
تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ادبی تنظیم بزم خیام کے بھی صدر ہیں, تو اس کے تحت اب تک کیا کچھ کروا چکی ہیں آپ؟
بزم خیام جو ہے ہماری بچپن کی تنظیم ہے, یعنی جب پاکستان میں تھے جب ہم بزم خیام کے تھرو بہت سارے پروگرام ہم نے وہاں کیے تھے, شو بزنس کے لوگوں کے ساتھ بھی, ادبی لوگوں کے ساتھ بھی, اور یہاں ہم نے جو ہے وہ نیو یارک میں اس کو جاری رکھا, اور ہم سال میں ایک بار ہم تقریب کرواتے ہیں شام قہقہا جس میں مزاحیہ شاعروں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اور ہم نثر نگاروں کو بھی اور وہ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کبھی کوئی شاعر پاکستان سے آ گیا اس کے اعزاز میں کوئی تقریب کر لی. اس طرح سے ہم اپنا ادبی ذوق بھی جاری رکھا ہوا ہے ہم نے اپنے فائنینشیل پلاننگ اور یہ جو
ان سب کے ساتھ
ملن یو ایس.
تو آپ کے پاس اپنے گھر والوں کے لیے کتنا وقت بچتا ہے؟
گھر والوں کے لیے بالکل وقت ہوتا ہے, اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
بلکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ملن یو ایس ڈاٹ کام پر کام کرتے ہیں؟
او بالکل, میرے دونوں بچے اور وائف اس کے اندر انوالو ہیں فلی, اور میری بہت ہیلپ کرتے ہیں. میرا بیٹا جو ہے وہ میڈیا کنسلٹنٹ ہے, جو آپ انفارمرشل دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ملن کے وہ اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, ہی از پروفیشنل فلم میکر. اور میری بیٹی جو کہ ٹیچر ہے, اور ساری جو ملن کے اوپر جتنی بھی اسکرپٹ ہیں جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر ویب سائٹ پہ وہ انہی کا ایڈٹ کیا ہوا ہے سارا.
تو پوری پورا گھر جو ہے وہ اس مشن میں لگا ہوا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کے اور مسلمان نوجوانوں کے اس مسئلے کو جو بڑا شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. تو آپ اگر میں آپ سے کہوں کہ اصل وجوہات کیا نظر آتی ہیں, کیوں ڈیلے ہو رہی ہیں شادیاں؟ کچھ تو میں نے ذکر کیا کہ دور دور ہیں, لیکن کوئی اور کوئی خاص وجہ جو یہاں پر شادیاں جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں؟
ڈیلے ہو رہی ہیں وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ تعلیم میں بچے لگے رہتے ہیں, دوسرے یہ کہ ویٹو پاور جو ہے وہ ماں باپ کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو بچے کہتے ہیں ابھی ہم آزادی ہم چاہتے ہیں, ابھی ہم ریڈی نہیں ہیں, تو وہ بھی ہوتا ہے. اور اگر پروفیشنل ایجوکیشن کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھی خاصی عمر نکل جاتی ہے اسی میں, تو اس لیے یہ ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن کوشش ہونی یہ چاہیے, میں میسج کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چاہے پروفیشنل ایجوکیشن بھی حاصل کر رہی ہوں یا کر رہے ہوں, ان کو انگیج آپ ارلی ایج پہ کر دیں تاکہ جیسے ہی وہ فارغ ہوں تعلیم سے تو ان کی شادی ہو جائے. لیکن بس یہی ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ اور ان کے ایک برین واشنگ بچپن سے کرنی پڑتی ہے تاکہ.
لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھائی کی طرف توجہ ہٹ جاتی ہے؟
نہیں, ایسا نہیں ہے. میرے اپنی ایک بھانجی ہے جس نے ڈاؤ میڈیکل سے میڈیکل کر کے آئی, اور جیسے ہی ختم ہوا اس کی شادی ہوئی, وہ یہاں شادی کر کے آئی, اس نے ریزیڈنسی شروع کیا, پہلے سال میں ہی پہلا بچہ ہوا اور تیسرے سال میں دوسرا بچہ ہوا, اور اب وہ 3 دن جاب کرتی ہے ایز اے ڈاکٹر, باقی دن جو ہے وہ بچے ریس کر رہے ہیں.
تو یہ میسج ہے آپ کا کہ جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور جو والدین ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, جو پاکستانی گھرانے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, جو پاکستانی امریکی گھرانے اور مسلمان نوجوان اور مسلمان گھرانے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, جمال محسن کا تجربہ یہ ہے کہ جلد از جلد جتنی جلدی ممکن ہو سکے کم از کم منگنی ضرور کر دینی چاہیے. شادی میں تھوڑی بہت دیر ہو لیکن تلاش رشتہ پہلے سے شروع کر دینی چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک پلیٹ فارم بھی بنا دیا ہے. سال میں 2 بار نیو یارک میں تو یہ کر رہے ہیں, اور ان کا ارادہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کو پھیلائیں گے بھی. آج کا پروگرام سمیٹنے کا وقت ہوا. کفایت خٹک, حق فریدائی, نجم میمن, منتظر خان وزیر, ساگر دین, عبدالغفور, راجہ یوسف, ابو حمد, عبدالقدیم, محمد حسین بلوچ, غلام مشتبہ اور یاسر علی, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے فیس بک پر اس پروگرام کو سراہا. آج کا پروگرام سمیٹنے کا وقت ہوا. ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ آج ہردم روایاں زندگی میں ہمارے مہمان تھے نیو یارک میں قائم شریک حیات کی تلاش میں مدد سے متعلق ایک ادارے ملن یو ایس ڈاٹ کام کے فاؤنڈر جمال محسن, جو ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہیں اور مالیاتی امور کی ایک ایڈوائزری کمپنی کے مالک ہیں. گزشتہ 35 سال سے اس انڈسٹری میں پروفیشنل سروسز فراہم کر رہے ہیں, اور صحافی ہیں, رائٹر ہیں, اور پاکستان نیوز میں 12 سال تک فائنینشیل پلاننگ, انشورنس, انویسٹمنٹ, ریٹائرمنٹ اور مارگیج جیسے موضوع پر کالم لکھتے رہے ہیں, اور اردو میں فائنینشیل پلاننگ پر 2 کتابیں باتیں پیسوں کی مصنف بھی ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام سمیٹتے ہیں اس توقع کے ساتھ کہ جمال محسن صاحب نے جس اچھوتے انداز سے پاکستانی امریکی اور مسلمان امریکی نوجوانوں کے لیے شریک حیات کے چناؤں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے ایک سروس شروع کی ہے یہاں امریکہ میں، پاکستان میں بھی اسی انداز کی سروسز شروع کرنے کی کوشش کی جائے، جو کوئی بھی کر سکتا ہے جس کے پاس وقت ہو اور کمیونٹی کی خدمت کا جذبہ ہو، وہ ان کو فالو کریں۔ پروگرام کو سمیٹتے ہیں، ہماری پروڈیوسر تھیں سعدیہ سر، یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
خدا حافظ، شکریہ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ مسلمان امریکہ میں آج اس پروگرام میں ہم آپ کو ڈاکٹر روف چیما کی گفتگو سنوائیں گے، جو یہاں وینچسٹر ورجینیا میں ایک پاکستانی سائیکیٹرسٹ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹریس کے لیول کو کم رکھنے سے ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
کئی بار تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈیورس ہو گئی ہے، فائنینشیل پریشانی ہے، یہ کامن کچھ ریزنز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایز سچ پریونٹ کرنے کے لیے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سٹریس لیول اپنا کم سے کم رکھا جائے۔ یہ جو بھی چیز آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے، اور جب آپ بہت زیادہ چیزیں ایٹ اے ٹائم شروع کر دیتے ہیں، یا اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہینڈل نہیں کر رہے، یہ آپ کو بہت زیادہ سٹریس کر رہی ہیں، تو اس سے آپ کی جو ہے وہ ڈپریشن زیادہ ہو جاتا ہے یا شروع ہو جاتا ہے، کیوں کہ نہیں ہوتا اور شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈپریشن اس طرح کی النس ہے کہ کئی دفعہ یہ کوئی وجہ نہ بھی ہو تو کئی مریض ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی وجہ نہیں ہے، ان کی فیملی لائف باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، جاب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اسٹل ان کو جو ہے وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو اس میں پیورلی جو ہے ان کے جو برین کے ریسیپٹرز ہیں وہ آؤٹ آف بیلنس ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہیں اس طرح کی النسز یہ فیملی میں رن کرتی ہیں، مطلب کہ اگر کسی ماں باپ بہن بھائی کو ڈپریشن تھا تو چانسز ہیں کہ آگے اس پیشنٹ کو بھی، جیسے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے، اسی طرح یہ بھی جو ہیں النسز یہ فیملیز میں رن کرتی ہیں۔ تو یہ دو مین ریزنز ہیں کہ یا تو جینیٹک اس کی ہوتی ہے، اگر جینیٹک نہ ہو تو جو انوائرمنٹل سٹریس ہوتا ہے اور میجر کوئی بھی، وہ اس سے ڈپریشن جو ہے شروع ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ سٹریس جو ہے وہ کم سے کم رکھا جائے، ایکسرسائز ہیلپ کرتی ہے، روٹین اچھی روٹین ہیلپ کرتی ہے، جس میں آپ رات کو اچھا سوئیں، ہیلتھی ایٹ کریں، بہت زیادہ اوور ورک نہ کریں، 7-8 hours ورک ڈے جو ہے وہ، کئی لوگ جو ہیں وہ 12-14 hours, 15 hours کام کر کے تو وہ سٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، اور ایونچولی کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایموشنلی جو ہے نا وہ کریش کر جاتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو واچ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اور فزیکلی اوور ایکسرٹ نہ کریں۔ جب آپ فزیکل ہیلتھ کا اور ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھیں گے تو اس سے ڈپریشن جو ہے اس کے ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔
آپ نے اسی شعبے کو کیوں چنا؟
پہلے میں انٹرسٹڈ تھا انٹرنل میڈیسن اور باقی کچھ اسپیشلٹیز میں، لیکن جب میں نے اس کی سائیکیٹری میں روٹیشن شروع کی تو مجھے اس سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گیا۔ مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگی کیونکہ اس میں پیشنٹ کو موسٹلی آپ نے اپنے مائنڈ سے ٹریٹ کرنا ہے، اس میں ہمارا کوئی فزیکل ایگزام نہیں ہوتا، کچھ اور اس طرح کی ہمارے ایکس رے نہیں ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں جن سے ہم دیکھ سکیں، اس سے آپ نے پیشنٹ سے بات کرنی ہے اور اپنے ڈائگنوسز کرنا ہے اور اپنے مائنڈ میں اس کا ٹریٹمنٹ پلان بنانا ہے کہ یہ پیشنٹ ہے، اس کا کیا ڈائگنوسز ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، تو سارا آپ نے اپنے مائنڈ سے کرنا ہے۔ تو وہ بڑا چیلنجنگ اسے بنا دیتا ہے کہ آپ کے پاس جو باقی ایکسٹرا ٹولس ہیں وہ نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کو ہاتھ پہ کٹ لگتا ہے، سرجن آتا ہے، وہ سرجن سامنے کٹ دیکھتا ہے اور اس کو اسٹیچز لگا دیتا ہے، वो मैं नहीं कह रहा कि वो इजी है बड़ा, लेकिन ये कि वो डिफरेंट लाइन ऑफ वर्क है। हमारा जो लाइन ऑफ वर्क है उसमें हमें स्वाइप पेशेंट की फेस के और उसके एक्सप्रेशन की जो कि हम नोट करते हैं कि डिप्रेस है कैसे, उसके अलावा हमें कुछ एज सच फिजिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है। हमने प्योरली हिस्ट्री पे और उसकी अपने सिम्टम्स से जाके अपने माइंड से उसको डायग्नोज करना है, जो कि बड़ा चैलेंजिंग बना देता है। और ये मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि ये वो स्पेशलिटी है कि जिसमें आपने पेशेंट के साथ कनेक्ट करके उसको हेल्प करने की कोशिश करनी है।
मतलब ये जितना ज्यादा बातचीत आप उससे करते हैं उतना ही ज्यादा उसके मर्ज के बारे में पता लगता है आपको?
जी बिल्कुल बिल्कुल, और उससे कनेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट घबराए ना, शर्माए ना, वो आपको अपनी चीजें जो है ना ओपनली बताने की कोशिश करें।
वर्जीनिया के एक मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रऊफ चीमा की गुफ्तगू आपने सुनी। खालिद हमीद, उर्दू, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।